नमस्कार भारत 29 अगस्त दिन शनिवार, मैं हूं अशोक कुमार। पाकिस्तान ने कहा परमाणु हथियारों की दौड़ में नहीं है शामिल, एटमी हथियारों में वृद्धि को लेकर आ रही मीडिया खबरों को किया खारिज, क्या कहते हैं जानकार?
नंबर्स अलोन का कोई ज्यादा असर नहीं होता जो न्यूक्लियर स्ट्रेटजी डिटरेंस होती है।
नागालैंड में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एनएससीएन खापलांग गुट के 7 सदस्यों की मौत और रातों रात मीडिया और सोशल मीडिया पर छाने वाले हार्दिक पटेल में क्या है खास?
मेरे भाई कोई भी कंपटीशन होती थी तो उसमें वो फर्स्ट रहता था, कोई भी लीडरशिप में कोई पार्टिसिपेट होता तो मेरे भाई फर्स्ट रहता था, लिखने हो या बोलना हो कुछ भी हो।
खबरें होंगी खेल की भी, लेकिन सबसे पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या में बढ़ोतरी की खबरों को गलत बताते हुए कहा है कि उसका परमाणु हथियार की दौड़ में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आने वाले 5 से 10 वर्षों में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रखने वाले देशों की सूची में अमरीका और रूस के बाद तीसरे नंबर पर आ सकता है। परमाणु हथियारों की होड़ को लेकर बहस एक ऐसे दौर में छिड़ी है जबकि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने यूरोप में प्रवासी संकट से मुकाबले में जुटे सभी देशों की सरकारों से अपील की है कि वो इस समस्या को इंसानियत के आधार पर हल करें। उन्होंने कहा है कि प्रवासियों की संख्या में इजाफा सीरिया में जारी संघर्ष जैसी बड़ी समस्याओं का नतीजा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ऐसे संकट के हल के लिए प्रतिबद्धता दिखाने को कहा है। बान की मून ने कहा है कि अगले महीने जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया भर के नेता जुटेंगे तब ये मुद्दा प्रमुख रहेगा। बीते 3 दिन के दौरान यूरोप जाने की कोशिश में सैकड़ों प्रवासी अपनी जान गंवा चुके हैं। हंगरी की पुलिस ने जानकारी दी है कि ऑस्ट्रिया में एक लॉरी में मृत पाए गए 71 प्रवासियों के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लॉरी बुधवार को ऑस्ट्रिया में मिली थी। ऑस्ट्रिया के अधिकारियों का कहना है कि लॉरी में मृत मिले लोगों में 59 पुरुष, 8 महिलाएं और 4 बच्चे हैं। माना जा रहा है कि ये सभी लोग सीरिया के हैं और उनकी मौत दम घुटने से हुई। संयुक्त राष्ट्र रिफ्यूजी एजेंसी की प्रवक्ता मेलिसा फ्लेमिंग ने कहा है कि इस हादसे से प्रवासियों की तकलीफ और मानव तस्करों के लालच का पता चलता है। उन्होंने कहा,
This we believe underscores the ruthlessness of people smugglers.
हम मानते हैं कि इससे मानव तस्करों की क्रूरता का पता चलता है जिन्होंने अपना दायरा भूमध्य सागर से यूरोप के हाईवे तक बढ़ा लिया है। इससे जाहिर होता है कि उन्हें इंसानी जिंदगी के लिए कोई सम्मान नहीं है, वो सिर्फ मुनाफे के पीछे हैं। ये थे मेलिसा फ्लेमिंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बहरीन की राजधानी मनामा में हुए धमाके में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक धमाके की चपेट में आकर कई आम लोग भी घायल हुए। कथित धमाका उस वक्त हुआ जबकि सैकड़ों लोग शहर की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी विपक्ष के नेता शेख अली सलमान और दूसरे राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। बीबीसी समाचार।
श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा से कार्यक्रम नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और हमारी मोबाइल वेबसाइट के जरिए अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव, और आपके साथ मैं हूं अशोक कुमार। कार्यक्रम में बात सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच महीनों से चल रही तनातनी की। दोनों देशों के बीच सीमा पर ताज़ा गोलाबारी में जहां कल पाकिस्तान ने अपने 8 आम नागरिकों के मारे जाने की बात कही, वहीं भारत का कहना है कि पाकिस्तान की गोलाबारी में उसके 3 निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। आम लोगों की इन मौतों के लिए दोनों देश एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और इसी तनाव के बीच अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट से एक नया विवाद शुरू हो गया है। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की संख्या में इजाफा कर रहा है और वो जल्द ही भारत को बहुत पीछे छोड़ देगा। हालांकि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि परमाणु हथियारों की होड़ में दौड़ में शामिल होने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वात्सल्य राय की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के एक अखबार में आई उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों में इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए है, परमाणु हथियारों की रेस में शामिल होने का उसका कोई इरादा नहीं है। इसके पहले अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने दो अमरीकी थिंक टैंकों के हवाले से बताया था कि पाकिस्तान अगले 5 से 10 वर्षों में 350 परमाणु हथियार जुटा लेगा। वो अमरीका और रूस के बाद सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाले देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ जाएगा। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान अपने प्रतिद्वंद्वी भारत के मुकाबले तेजी से परमाणु क्षमता में बढ़ोतरी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल पाकिस्तान के पास 120 और भारत के पास 100 परमाणु हथियार हैं। वैसे रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि परमाणु नीति की बात हो तो हथियारों की संख्या से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी नईम खालिद लोधी ने एक निजी चैनल दुनिया टीवी से कहा,
जो बाकी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी को लोग जानते अच्छी तरह समझते हैं कि नंबर्स अलोन का कोई ज्यादा असर नहीं होता। जो न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी डिटरेंस होती है उसकी वजह यह है कि अब नंबर्स में, मिसाल के तौर पे आप कहें किसी के पास 20 एटमी हथियार हैं, एटमी बॉम्ब है, भाई वो मेगा टन के हैं, वो किलो टन के हैं, वो टेक्टिकल वेपन है। तो ये पहली बात तो ये कि नंबर्स एक खास नंबर के बाद उनकी अहमियत खत्म हो जाती है।
पाकिस्तान भले ही परमाणु हथियारों की होड़ में शरीक होने से इनकार कर रहा है लेकिन ये खबर ऐसे वक्त में आई है जबकि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास बढ़ती दिख रही है। दोनों देश एक दूसरे पर नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि भारत की ओर से हुई गोलीबारी में उसके 8 नागरिकों की मौत हो गई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनका देश इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाएगा।
ये मसला हम यूनाइटेड नेशंस का जो इजलास है आज के 3 हफ्ते के बाद जो शुरू हो रहा है जनरल असेंबली का, उसमें भी उठाएंगे। वजीर आजम साहब जो है अमरीका जा रहे हैं, वहाँ पे स्टेट विजिट के ऊपर, वहाँ भी ये उठाया जाएगा।
दूसरी तरफ भारत ने भी पाकिस्तान पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। भारत का आरोप है कि शुक्रवार को पाकिस्तान ने आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में रिहायशी इलाकों में भारी गोलाबारी की जिससे 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा है,
पाकिस्तान इज यूजिंग टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द सिविलाइज्ड वर्ल्ड।
पाकिस्तान आतंकवाद को कूटनीतिक औजार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं पता कि दुनिया इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रही है। बिना किसी वजह के निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। मैं दुनिया से अपील करूंगा कि ये पाकिस्तान को चरमपंथी देश घोषित करने का सही वक्त है। ये थे निर्मल सिंह के शब्द। आरोपों और प्रत्यारोपों के इस दौर से साफ है कि भारत और पाकिस्तान में परमाणु हथियारों की होड़ हो या ना हो, लेकिन दोनों देशों के बीच एक दूसरे पर आरोप लगाने का मुकाबला जरूर चल रहा है।
उधर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में अलगाववादी संगठन एनएससीएन खापलांग गुट के 7 सदस्य मारे गए। सुरक्षा बलों का कहना है कि उन्होंने घटनास्थल से गोला बारूद भी बरामद किया है। कुछ देर पहले मैंने गुवाहाटी में संपर्क किया पत्रकार दिलीप शर्मा से और पूछा कि ये मुठभेड़ कहाँ हुई और इसके बारे में क्या ताज़ा जानकारी है।
मुठभेड़ की जो ये घटना है ये शुक्रवार को अपराह्न 1 बजे हुई नागालैंड का त्वेनसांग जिला जहाँ पंगसा क्षेत्र है। ये पंगसा क्षेत्र की घटना है। सेना के एक अधिकारी से मेरी बात हुई थी घटना को लेकर। कर्नल सुनीत न्यूटन जो सेना के जनसंपर्क अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि ये मुठभेड़ नागालैंड के एनएसएन खापलांग और सुरक्षा बलों के बीच हुई है। लेफ्टिनेंट कर्नल ने बताया कि नियमित पेट्रोलिंग पर निकले थे सुरक्षा बलों के जवान और उस दौरान एक साइकिल, एक जिप्सी और बोलेरो गाड़ी को सामने से आते देखकर इन्हें शक हुआ और इन्होंने गाड़ी को रोकने का सिग्नल दिया। हालांकि इस बीच अलगाववादी कुछ कैडरों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए फायरिंग शुरू कर दी और सुरक्षा बलों के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और इसमें एनएससीएन खापलांग के 7 कैडर मारे गए।
सेना को भी किसी तरह का कोई नुकसान उठाना पड़ा है?
हाँ, जानकारी मिली है कि इस मुठभेड़ में एक सुरक्षा कर्मी घायल हुआ है और 4 ओवरग्राउंड कैडर भी घायल हुए हैं।
जी।
ये ओवरग्राउंड कैडर हुए लोग हैं जो संगठन के लिए वसूली वगैरह का पैसा या उन्हें राशन पहुंचाना, इस तरह का काम करते हैं।
ये बताइए कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जो समझौता किया है नागाओं से, जो NSCN का IM गुट है उससे जो समझौता हुआ है, और ये खापलांग गुट के लोगों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है, तो क्या समझौते के बाद जो नागाओं का जो आपसी टकराव है क्या और तेज हो रहा है?
क्योंकि नागाओं की जो प्रमुख जो संस्थाएं हैं वो NSCN IM के जिनके समझौते को लेकर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री ने भले ही इस NSCN IM के समझौते को ऐतिहासिक बताया था, लेकिन चूंकि ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, इसमें अभी तक कई सारी चीजें हैं, नागाओं की कई पुरानी मांगे हैं, जो 8-7 साल से जो संघर्ष चला है, ये मांगों का एकदम जो जिक्र जो है एकदम खुलकर नहीं आया, या इस पर अभी आगे भी बातचीत रहेगी, इसलिए कुछ ज्यादा इन लोगों में इस समझौते को लेकर उत्साह नहीं देखा जा रहा है। NSCN खापलांग ने भी 2001 में केंद्र सरकार के साथ द्विपक्षीय संघर्ष विराम समझौता किया था, लेकिन इसी वर्ष मार्च में इन्होंने समझौता तोड़ दिया और इनके कैडर शिविरों से भाग गए। अब इनका 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 मकसद है सुरक्षा बलों पर हमला करना, राजनीति से जुड़े लोगों पर हमला करना। ये संगठन सरकार पर दबाव बनाने के लिए और उन चीजों को मनवाने के लिए इस तरह का लगातार हिंसा फैलाने की प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपको याद होगा मणिपुर में जो चंदेल जिले में जो सेना के काफिले पर एक हमला हुआ था जहां 18 जवान मारे गए थे, वो भी NSCN खापलांग ने ही किया था।
ये थे गुवाहाटी से पत्रकार दिलीप शर्मा। और अब बात हार्दिक पटेल की। चंद हफ्तों पहले तक क्या हम और आप हार्दिक पटेल और उनके नाम से वाकिफ थे? शायद नहीं, लेकिन अब ये नाम सबकी जुबान पर है। क्या मीडिया, क्या सोशल मीडिया, सब जगह उनके चर्चे हैं। 22 साल का एक युवक जो गुजरात में चल रहे पटेल आरक्षण आंदोलन का चेहरा है। इसी हफ्ते अहमदाबाद में लाखों लोग हार्दिक को सुनने के लिए रैली में पहुंचे। आखिर उनके व्यक्तित्व में ऐसा क्या खास है, यही जानने की कोशिश की BBC संवाददाता जुबैर अहमद ने।
तो इस समय मैं हार्दिक पटेल के गांव उनके घर आया हूं और उनकी बहन से हमारी बातचीत होनी है। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम मोनिका पटेल है।
कैसा लग रहा है भाई के बारे में टीवी चैनलों में देख के, अखबारों में देख के, कैसा लगता है?
अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है मेरे भाई के बारे में, बहुत जिनके ज्यादा लोग प्रशंसा कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है अभी तो।
लेकिन बहुत सारे लोग तो बहुत अच्छी बात नहीं भी बोलते, तो तब भी हैप्पी?
नहीं नहीं, वो क्या है ना कि कुछ लोग अच्छे नहीं बोलते, थोड़ा बुरा भी लगता है कि मेरे भाई के बारे में लोग बुरा भी बोलते और अच्छा बोलते तो अच्छा फील होता है।
BA पास कर लिया?
हाँ, BA पास कर लिया मैंने।
कितने मार्क्स आए?
64 आए हैं।
भाई से भी ज्यादा है?
हाँ, भाई से भी ज्यादा है।
भाई तो लगता है पढ़ने वढ़ने में ज्यादा अच्छा नहीं था?
नहीं, वो ज्यादा अच्छा नहीं था, वो तो बस वो कहते हैं ना कि स्टडी के लिए, डिग्री पाने के लिए वो स्टडी करता था बस।
अच्छा, लेकिन पढ़ने में दिल नहीं लगता?
हाँ, पढ़ने में दिल नहीं लगता।
किस चीज में दिल लगता था?
क्रिकेट में ज्यादा उसका दिल लगता था।
उसके अलावा किसी चीज में रुचि थी उनकी?
लीडरशिप में बहुत ज्यादा था।
ये कैसे मालूम?
क्योंकि मेरे भाई कोई भी कंपटीशन होती थी तो उसमें वो फर्स्ट रहता था। कोई भी लीडरशिप में कोई पार्टिसिपेट होता तो मेरे भाई फर्स्ट रहता था, लिखने हो या बोलना हो, कुछ भी हो।
तो उन्होंने कभी पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल कभी ज्वाइन किया था? कभी उनके लिए काम किया?
नहीं नहीं, कभी ज्वाइन नहीं किया।
आपके पिता तो भारतीय जनता पार्टी में है?
हाँ, वो तो है, वो तो नॉर्मली सब लोग देते ही ना, भाजपा या कोई कांग्रेस, किसी को भी वोट तो देते ही। तो मेरे फादर भी BJP को देते थे वोट।
तो आपको कभी ऐसा लगता था कि आगे जाके, जब आप बचपन में आप लोग साथ में रहते थे घर में, तो लगता था कि इतने बड़े पटेल समुदाय का नेतृत्व करेंगे वो?
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता था। अब वो क्या है कि वो छोटे था तब से उसमें ये गुण तो थे ही, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मेरा भाई इतना बड़ा होकर इतनी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी ले लेगा।
पिछले एक महीने से काफ़ी बिजी है वो?
हाँ, बिजी है भाई।
तो आप घर आते हैं या फोन वोन करते हैं?
नहीं, घर पे तो नहीं आए, लास्ट मंथ से वो भाई घर पे नहीं आए। बट क्या है कि एक वन वीक में भाई कॉल कर देता है, मम्मी पापा से मुझसे बात कर लेता है।
आप क्या चाहती हैं भाई क्या करें?
भाई बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और मैं ये आगे भी यही सोचूं कि भाई समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करे।
हार्दिक पटेल ने जिस स्कूल में पढ़ाई की है वो इस गांव में है, जिसके कई शिक्षक आज भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इनमें से खुद स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर दवे हैं। प्रिंसिपल साहब, आप ये बताइए कि हार्दिक को आप लोग किस तरह से याद करते हैं?
हम उसको बहुत याद करते हैं क्योंकि पहले से वो लीडरशिप के गुण, वो उसका जो लीडरशिप के जो तत्व है उसमें थे, और जो हमारी क्रिकेट टीम जो सारी स्कूल 1300 विद्यार्थी से इधर वे 300 में से जो 12 खिलाड़ी चुने जाते हैं उसमें हार्दिक पटेल ओपनिंग बैट्समैन थे हमारे, उसी हिसाब से मैं बहुत इसे याद करता हूँ।
तो एज ए विद्यार्थी कैसे थे वो, पढ़ने लिखने में कैसे थे?
वो पढ़ने में तो मीडियम थे मगर उसमें राष्ट्रभावना थी, लीडरशिप के थी और कुछ जीवन में करके बताने की तमन्ना थी। वो तो हम तो लीडर नहीं, हम प्रिंसिपल हैं, मगर हम गौरव ले सकते हैं कि हमारा स्टूडेंट था, मगर वो तो सरकार की पॉलिसी है क्या है अनामत नहीं अनामत, वो सरकार की पॉलिसी। हमें प्रिंसिपल की तरफ से और गांव की तरफ से हम गौरव ले सकते कि हार्दिक हमारा स्टूडेंट था। आज मोदी से भी ज़्यादा लोग इकट्ठा करके वो भाषण कर सकता है, ऐसा हम गौरव ले सकते हैं।
हार्दिक पर गर्व है उनके अध्यापकों को। वैसे हार्दिक न सिर्फ टीवी, अखबार और सोशल मीडिया पर छाए हैं बल्कि अब उन्हें राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हार्दिक पटेल की मांगों का समर्थन किया है। हमारे साथी विनीत खरे ने गुजरात से राजनीतिक विश्लेषक अच्युत याग्निक और पटना से वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद दोनों से एक साथ बातचीत की और सबसे पहले सुरूर अहमद से पूछा कि ऐसे वक्त जब बिहार में चुनाव होने हैं नीतीश कुमार हार्दिक पटेल की मांग का समर्थन करके क्या हासिल कर पाएंगे?
उनकी राजनीतिक और सामाजिक दोनों कंपल्शन है। राजनीतिक ये कि उनको एक अच्छा मौका मिला है कि नरेंद्र मोदी जी को वो उन्हीं के होम टर्फ उन्हीं के स्टेट में कॉर्नर करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बिहार में आकर अक्सर बार बार वो जाति की बात और कृष्ण के अवतार बहुत तरह की बातें करते रहे। ये पहला मौका नीतीश को मिला और उनके साथी लालू को भी मिला कि वहाँ उनके जिसको इंग्लिश में कहते हैं टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। दूसरी सामाजिक पहलू ये है कि वो पटेल यहाँ की जो आबादी यूपी के इस यूपी और बिहार में बड़ी आबादी है कुर्मी जो अपने को एसोसिएट करते हैं, बहुत से लोग के तो नाम में भी पटेल लगा रहता है, जैसे अपना दल के जो फाउंडर ही थे यूपी में सोने लाल पटेल, बिहार में भी पटेल के नाम पर बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी और अक्सर कुर्मीज भी सरनेम पटेल लगाते हैं। एक उसको जो सोशल बॉन्ड भी उसको भी वो लिंक करना चाहा। इसी
राजनीतिक तौर पर अच्युत याग्निक जी जिस तरह से कोशिश की है सिचुएशन को स्थिति को संभालने की, इस पर आप क्या कहेंगे आनंदीबेन पटेल ने?
कुर्मी ये नीतीश जी राजनीतिक ढंग से ये ऐसी बात कर सकते हैं मैं समझ सकता हूँ, मगर ये कुर्मी की जो अवस्थिति है और यहाँ पाटीदार कम्युनिटी की जो स्थिति है उसकी तुलना नहीं कर सकते। यहाँ जो पाटीदार है वो राजनीति में भी बहुत आगे हैं। मान लो कि 120 जो अभी बीजेपी के एमएलए है इसमें से 40 है वो लोग, 7 मिनिस्टर है मुख्यमंत्री के अलावा, बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है वो भी पटेल है।
नहीं नहीं तो लेकिन इसके अगर आप कह रहे हैं कि एक रिप्रेजेंटेशन है अच्युत जी, तो फिर ये जो लाखों लोग इकट्ठा हुए इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे फिर?
वो युवा पीढ़ी का ये आंदोलन जो है युवा पीढ़ी का है और युवा पीढ़ी को लगता है कि उनको अन्याय हो रहा है, उनको ऐसा लगता है कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है और नौकरी इसलिए नहीं मिल रही है कि ये रिजर्वेशन सिस्टम है। दूसरा उनको ऐसा लगता है कि ये जो उनको ज्यादा यहाँ के पटेलों को ज्यादा प्रोफेशनल डिग्री लेके अमेरिका जाने का बहुत शौक है और उनको लगता है कि ये मेडिकल और इंजीनियरिंग में हमें प्रवेश नहीं मिल रहा है क्योंकि रिजर्वेशन है। तीसरा उनको ये लगता है कि काफी पटेल जो है वो सौराष्ट्र में और उत्तर गुजरात में और दक्षिण गुजरात में भी वो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कैश क्रॉप से जो पैसे कमाए वो उन्होंने ये इंडस्ट्री में लगाए। अब नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि अपने गुजरात मॉडल में बड़े जो उद्योग है उनको तो सपोर्ट किया मगर ये स्मॉल एंड मीडियम जो उद्योग है उनको सपोर्ट नहीं किया। तो वहाँ कोई 50,000 जितने जो यूनिट है वो क्लोज है अभी और वो ज्यादातर पटेल लोगों के है।
सुरूर अहमद, आप सुन रहे होंगे अच्युत याग्निक की बात, जो कुछ गुजरात में हो रहा है और क्योंकि चुनाव नजदीक है बिहार में, क्या असर पड़ सकता है वहाँ के जो लोग हैं या ओबीसी कम्युनिटी है जो लोग सुन रहे हैं पार्टीदारों को?
देखिए दो असर है, एक तो ये बात वो सही है कि कुर्मीज यहाँ दे आर नो मैच, उनके बराबर नहीं है, बहुत ही है, लेकिन कुर्मीज की आबादी जो पटना के आसपास में और पॉलिटिकल पावर। दूसरी बात यह है कि इसको साथ साथ लालू यादव भी सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि अलग बात है कि जनता दल यू के अध्यक्ष जो है शरद यादव कुछ और बोल गए, लेकिन इलेक्शन में एक ये है कि ये बात तो ये लोग पूरे बैकवर्ड क्लास में और ये कहने को हो रहा है कि देखिए अभी वो खुद अपने घर में परेशान है, जिस तरह से हमको डिस्टर्ब करना चाह रहे थे अपने डिस्टर्ब हो गए, जो इश्यूज यहाँ उठा रहे थे पहले अपना घर तो देखें हमको क्या देख रहे हैं। एक बात, दूसरी बात एक और हो रही है वो ये कि कुछ जो लैंडेड अपर कास्ट है उनके भनक, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि बिहार में एक बड़ी आबादी लैंडेड है और वेल ऑफ है भूमिहार, उनके कुछ हलके में एक दो बात गुनगुन हुआ कि भाई जब वो डिमांड कर सकते हैं तो वाई नॉट हम लोग, तो कहीं ये चेन ना चल जाए, जाट को मिल ही गया वहां और उनको मिल ही गया, जाट कर ही रहे रिजर्वेशन, पटेल डिमांड कर ही रहे हैं तो, और इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, लैंडेड कास्ट हैं, अच्छे कास्ट हैं, इन्फ्लुएंशियल कास्ट, तो व्हाई नॉट भूमिहार, ये क्यों छूट जाए।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारतीय मीडिया में जनसंख्या के ताजा आंकड़ों को धार्मिक आधार पर ज्यादा उछाला जा रहा है। क्या इतने महत्वपूर्ण आंकड़ों को मात्र धर्म के चश्मे से देखना सही है? इसी विषय पर है शनिवार 29 अगस्त का इंडिया बोल। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इन नंबरों पर मुफ्त टेलीफोन करें 1811-7000 और 1811-7001, या फिर अपने नंबर इस पते पर ईमेल करें bbchindi.indiabowl@gmail.com।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो ज़रूर फ़ोन लगाइएगा और अपनी बात ज़रूर रखिएगा इंडिया बोल में। आगे बढ़ें इससे पहले जान लेते हैं आज के अखबारों में क्या कुछ छपा है। वात्सल्य जी, काफ़ी अखबार आपके साथ हैं देख रहा हूं मैं।
जी अशोक जी, अखबार सामने हैं और अखबार खुल भी गए हैं, और अगर आज अखबारों में खासकर हिंदी अखबारों की बात की जाए तो भारत पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के उल्लंघन की खबर को
जी
सभी अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है भारत में 3 मौतें। दैनिक भास्कर ने भी इसे पहले पन्ने पर जगह दी है और कहा है सीमा पार से फिर फायरिंग, 3 लोगों की मौत। अमर उजाला ने इसे लीड खबर बनाया है। इस अखबार का हेडिंग है पाक ने रिहायशी इलाकों में दागे मोर्टार। जनसत्ता ने इसको हेडलाइन दिया है पाक की गोलाबारी में 3 नागरिकों की मौत
जी।
इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसे लीड खबर बनाया है। अखबार ने बताया है कि पाकिस्तान ने अपने 8 नागरिकों के मारे जाने का दावा किया है और भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया है। इसके अलावा एक और खबर जिसे सारे अखबारों के पहले पन्ने पर मैं देख रहा हूं वो है हाई प्रोफाइल शीना मर्डर केस से जुड़ी खबर
जी।
दिल्ली की सूरत बदलने की खबर को भी ज्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है 3 फ्लोर्स बेसमेंट प्रपोज फॉर लुटियंस। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है 20 दिल्ली में रियल एस्टेट बूम की तैयारी। दैनिक जागरण ने इसे लीड खबर बनाया है, बॉक्स में जगह दी है, हेडिंग दिया है जनता के सुझाव से बदलेगा दिल्ली का नक्शा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिल्ली की औरंगजेब रोड का नाम पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है।
सोशल मीडिया में खासी चर्चा है इस खबर की
जी। जनसत्ता ने भी इसे एंकर स्टोरी बनाया है। इसके अलावा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर केस की तैयारी की गई है, इस खबर को भी सारे अखबारों ने पहले पन्ने पर, ज्यादातर अखबारों ने जगह दी है।
और सारे अखबारों में आज राखियों की तस्वीरें छपी हैं रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में।
हिंदुस्तान अखबार ने तो राखी की खबर को ही लीड बनाया है और हेडलाइन दिया है कि कहीं पेड़ों को राखी, कहीं गिफ्ट में शौचालय का तोहफा।
प्रधानमंत्री इस मौके पर चाहते हैं कि भाई अपनी बहनों को सुरक्षा के तौर पे उनका बीमा कराएं।
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर को मैं देख रहा हूँ, इसने अपनी लीड खबर बनाई है 1965 का भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था, उस युद्ध के 50 साल पूरे हो गए हैं तो उसको याद किया गया है। इसके अलावा अमर उजाला ने अपनी एंकर स्टोरी में UAE में दाऊद की संपत्तियों की जाँच होगी, इस तरह की खबर दी गई है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर जो उलझाव चल रहा है उसको भी सारे अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है और ये बताया है कि अभी भी इस मुद्दे पर कोई समाधान नहीं निकल पाया है। दैनिक जागरण ने इसमें हेडलाइन दिया है अटका सुलह का रास्ता।
तो बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए वात्सल्य, और अब चलते हैं खेलों की दुनिया की तरफ।
खेल और खिलाड़ी के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में कल से मौजूदा टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच शुरू हुआ, लेकिन जब भारत का स्कोर 2 विकेट खोकर 50 रन था तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई और उसके बाद खेल नहीं हो सका। भारत ने तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम में 2 परिवर्तन किए। सलामी बल्लेबाज मुरली विजय की जगह चेतेश्वर पुजारा और विकेट कीपर रिद्धिमान साहा की जगह नमन ओझा को टीम में शामिल किया गया। मुरली विजय और साहा चोटिल हैं। वैसे कल सुबह टॉस श्रीलंका के कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया। केएल राहुल और चेतेश्वर पुजारा ने पारी की शुरुआत की। धमिका प्रसाद की पहली गेंद पर राहुल ने 2 रन बनाकर अपना और भारत का खाता खोला, लेकिन अगली ही गेंद ऑफ स्टंप से बाहर पिच होकर अंदर आई, जिसे राहुल ने छोड़ा और उनका स्टंप उखड़ गया।
And he's cleaned him. So it is once again the first over. KL Rahul is a shouldered arms and the ball nipped back in after pitching.
इस खराब शुरुआत के बाद नए बल्लेबाज और पिछले मैच में शतक जमाने वाले अजिंक्य रहाणे भी अधिक देर तक विकेट पर नहीं टिक सके। वो केवल 8 रन बनाकर नुआन प्रदीप की गेंद पर LBW हुए, तब भारत का स्कोर केवल 14 रन था। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा और कप्तान विराट कोहली के बीच तीसरे विकेट के लिए नाबाद 36 रनों की साझेदारी हुई। स्टंप के समय चेतेश्वर पुजारा 19 और विराट कोहली 13 रन बनाकर खेल रहे थे। उल्लेखनीय है कि पिछले 22 सालों से भारत ने श्रीलंका में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। फिलहाल दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। वहीं अक्षर पटेल की घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ए ने दक्षिण अफ्रीका ए को कल दूसरे 4 दिवसीय मैच में 1 पारी और 81 रन से हरा दिया। और अब बात विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। दुनिया के सबसे तेज धावक यूसेन बोल्ट ने 100 मीटर दौड़ के बाद 200 मीटर दौड़ में भी अपना परचम लहराया। हालांकि उन्हें अमेरिका के जस्टिन गैटलिन से दोनों स्पर्धाओं में कड़ी टक्कर मिली, लेकिन जीत तो आखिर जीत है। जबकि कल बीजिंग में जारी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्डधारी चीन की लियो होंग ने 1:27.45 का समय लेकर महिलाओं की 20 किलोमीटर पैदल चाल का स्वर्ण पदक जीता। भारत की राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी खुशबीर कौर इस स्पर्धा में कोई खुशनुमा प्रदर्शन नहीं कर सकी। वो 49 एथलीटों में 37वें स्थान पर रही। अब तक भारत की ललिता बाबर ही उम्मीदों के अनुरूप कुछ अच्छा कर सकी है। वो महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज में 8वें स्थान पर रही। भारत की उम्मीदें अब विकास गौड़ा पर है, जो डिस्कस थ्रो के फाइनल में आज अपना दमखम दिखाएंगे। इनके अलावा संदीप कुमार और मनीष सिंह रावत पुरुषों की 50 किलोमीटर पैदल चाल में हिस्सा लेंगे। आज ही महिला रिले टीम भी 4x400 मीटर दौड़ में उतरेगी। उधर आज दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में भारत में खेलों के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और उनके कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार पाने वालों में इस बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पी श्रीजेश भी हैं।
बहुत खुश है और बहुत हॉनर्ड है क्योंकि ऐसे एक अवार्ड मिला है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा टीम का हिस्सा है क्योंकि हमारे टीम के जीतने की वजह से ये अवार्ड मिला है, तो ये अवार्ड गोज़ टू माय टीम।
वैसे अर्जुन पुरस्कार पाने वालों में इस बार श्रीलंका से टेस्ट मैच खेल रही भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रोहित शर्मा, जिमनास्टर दीपा कर्माकर और पहलवान बजरंग भी शामिल हैं। खेल और खिलाड़ी में आज बस इतना ही।
और इससे पहले कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़े, मेरे सामने टीवी चल रहा है। मैं आपको बता दूं, नासिक में जो कुंभ चल रहा है, आज उसका पहला शाही स्नान है। लोग बड़ी संख्या में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा मैं भी टीवी पर देख पा रहा हूं। और अब कार्यक्रम के समापन से पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या में बढ़ोतरी की खबर को गलत बताते हुए कहा है कि उसका परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने यूरोप में प्रवासी संकट से मुकाबले में जुटे सभी देशों की सरकारों से अपील की है कि वो इस समस्या को इंसानियत के आधार पर हल करें। हंगरी की पुलिस ने जानकारी दी है कि ऑस्ट्रिया में एक लॉरी में मृत पाए गए 71 प्रवासियों के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बहरीन की राजधानी मनामा में हुए धमाके में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। अफ्रीकी देश चाड में चरमपंथी संगठन बोको हराम के 10 सदस्यों को मौत की सजा सुनाई गई है। चाड की राजधानी निजामे में 3 दिन तक चरमपंथी गतिविधियों के आरोप में चले मुकदमे के बाद सजा का ऐलान हुआ। बीबीसी समाचार।
और इसी के साथ नमस्कार, भारत का समय समापन की तरफ बढ़ता हुआ। अनुमति दी थी अशोक कुमार को। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। ठीक एक घंटे बाद आपसे मिलेंगे विश्व भारती में।